चलिए रुकू नंबर 6 पे चलते हैं। वस्कुर फिल किताबि इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया। इस किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो, बेशक वो बड़ी सच्चाई वाले पैगंबर थे। जबकि उन्होंने अपने बाप से कहा, अब्बा जान आप इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं जो ना सुने ना देखे ना आपको कुछ फायदा दे सके। या बतीनी कज्जा अनी मिन मिनल इल्म मालम यातिक। मेरे मेहरबान बाप आप देखिए कि मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास तो आया ही नहीं, तो आप मेरी ही बात माने, मैं बिल्कुल सीधी राह की तरफ आपकी राहबरी करूँगा। मेरे अब्बा जान आप शैतान की परस्तिश से बास आ जाएं। शैतान तो रहमो करम करने वाले अल्लाह ताला का बड़ा ही नाफरमान है। अब्बा जान मुझे खौफ लगा हुआ है कहीं आप पर कोई अजाब ना आ पड़े कि आप शैतान के साथी बन जाएं। इसने जवाब दिया, ए इब्राहिम क्या तू हमारे माबूदों से रू गर्दानी कर रहा है? सुन अगर तू बास ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा, जा एक मुद्दत दराज तक मुझसे अलग रह। قال سلام عليك, कहा अच्छा आप पर सलाम हो, मैं तो अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करता रहूंगा जो मुझ पर हद दर्जा मेहरबान है। वो मैं तो तुम्हें भी और जिन जिन को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो इन सब को छोड़कर जा रहा हूँ, सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से दुआ मांगकर कभी महरूम न रहूंगा। दूसरे नबी की जुबान से ये इकरार हो रहा है कि रब से मांगने वाले कभी महरूम नहीं रहते। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सब को और इनके सिवा इनके सब माबूदों को छोड़ चुके तो हमने इन्हें इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम अता फरमाए और दोनों को नबी बनाया। वहबना लहुम मिन रहमतिना वजालना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया। और इन सब को हमने अपनी बहुत सी रहमतें अता फरमाई और हमने इनके जिक्र जमील को बुलंद दर्जे का कर दिया। ये था रुकू नंबर 6। इसका उन्वान क्या है? जब इब्राहिम ने अपने बाप से कहा। पूरा रुकुए की थीम पे चल रहा है। एक दर्दमंद बेटा जो अपने बाप को दीन की दावत देता है, अपने बाप को कितने प्यार से बुलाते हैं, कितने खूबसूरत दलाइल देते हैं, क्या अंदाज है खूबसूरत। एक एक बात वाजे है। हमारे लिए अमल की बात क्या है कि अगर बड़ों को तबलीग करने का मौका आए तो इसकी इजाजत है। अंदाज आजिज मिजाज होना चाहिए, आजिजी से बात हो, बात इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। फिर दलाइल के साथ बात करनी चाहिए, उनको अल्लाह के अजाब से भी डराना चाहिए, शैतान की दोस्ती से बचने की दावत दी जाए। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा जब किसी छोटे इंसान को इल्म आ जाता है, जैसे मसाब में सुनने वालों में किसी का बच्चा हो सकता है दीन में आगे बढ़ जाए, तो जब वो आपको कोई बात कहना चाहे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग कहते हैं तुम कल के बच्चे हो के हमें समझाओगे, हाँ तो ये बात नहीं है। इस चीज़ को कभी भी अपने लिए हिदायत से दूरी की वजह नहीं बनाना। दूसरी, इससे हमें दर्दमंदी समझ आती है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि बाप के लिए दुआ का वादा किया। इसको अगर आप हाईलाइट कर लें, क्योंकि अमूमन हम सुनते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप के लिए दुआ की थी, तो वो कब की क्यों की थी, ये है उसकी वजह। इन्होंने वादा कर लिया था आयत नंबर 47 में, अस्तग़फिरुलक रब्बी। इस बात पे अमल करते हुए उन्होंने अपने बाप की मगफरत की दुआ की। इसके अलावा किसी मुशरिक के लिए मरने के बाद दुआ की इजाज़त जो है वो नहीं है। आसान बात है, अगले रुकू पे चलते हैं। 7 नंबर रुकू, वस्कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिया। इस कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी करो जो के चुने हुए थे और रसूल और नबी थे। हमने इसे तूर की दाई जानिब से निदा की और रास गोई करते हुए इसे करीब कर लिया और अपनी खास मेहरबानी से इसके भाई को नबी बनाकर अता फरमाया। اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرو، وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نیک کردار پیغمبر تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا تھا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب سے، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی، یہ سجدہ کرتے اور روتے، گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا، بجز ان کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کی ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن، ہمیشگی والی جنتیں جن کا وعدہ، جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف اس سلام ہی سلام سنیں گے۔ ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہوں۔ ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے، ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کی کل چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں۔ تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تسمع له سمیعا، آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام، ہم پلہ کوئی اور بھی ہے؟ ہے کوئی؟ جواب دیجیے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا رکوع نمبر 7، اس کا عنوان کیا ہے؟ انعام یافتہ بندے۔ اس رکوع میں 4 مختلف انبیاء کرام کا ذکر کر کے ان کے کچھ وصف بیان کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو خوبی اس کے اندر سب کے لیے الگ الگ کی تھی، نوٹ کر لیجئے، کبھی آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ ہر نبی کے ناطے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھیں۔ چنے ہوئے تھے، رسول اور نبی تھے، طور کی دائیں جانب اللہ نے ان کو پکارا، راز کی گفتگو کے لیے ان کو اپنا قرب دیا، اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا۔ حضرت اسماعیل کے ناطے سے 4 باتیں ہیں، وعدوں کے سچے تھے، رسول اور نبی تھے، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھے۔ پھر حضرت ادریس کی 3 خوبیاں ہم نے پڑھی، راست باز انسان تھے، سچے انسان تھے، نبی تھے، اللہ نے مقام بلند پر اٹھا لیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے زمین پہ نہیں آسمان پہ موت آئے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی روح آسمان پہ قبض کی گئی تھی، فرشتے ان کو اوپر لے گئے، جب وہاں پہنچے تو پھر وہاں پہ پھر ان کی روح قبض ہوئی۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ یہ حجت بنانی چاہتے ہیں نا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، جو انبیاء کرام کے بارے میں ساری باتیں جمع تھیں، وہ ان میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو مشترک تھیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، سارے نبی آدم کی اولاد میں سے تھے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار لوگوں کی نسل میں سے تھے۔ یہ بھی ایک نیا نقطہ ہوگا آپ کے لیے، سب نبی حضرت نوح کی اولاد سے نکلے، اور اکثریت بنی اسرائیل यानी बल्कि आप कह सकते हैं कि इब्राहिम के दोनों बेटों की नस्ल से थे, इस्माइल और इसराइल की औलाद में से थे। सबको अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी, यानी अल्लाह ना करे कोई भटका हुआ नहीं था। जब रहमान की आयतें इनको सुनाई जाती थी तो रोते हुए सजदों में चले जाते थे। इतनी खूबियों के बाद अंबिया के जाने के बाद क्या हुआ, इसका जिक्र हमने देखा। ना खल्फ जानशीन आ गए, औलादों में बिगाड़ पैदा हुआ। क्या नमाजों को ज़ाया किया उन्होंने, ख्वाहिशात की पैरवी की और गुमराही के इंजाम से दो चार हुए। कुछ लोग जो हिदायत पर रहे वो जन्नत में दाखिल होंगे और उनको उनका हक मिलेगा। और उसके बाद फिर जन्नत के नाते से छह बातें हमने पढ़ी इस रुकू में। तिलकल जन्नतुल्लती नूर सुमिन इबादिना मन का न तकिया। पहली बात, जन्नत का वादा दिया है अल्लाह ने, अगर आप वो सारे काम कर लेना जो अल्लाह ताला कहता है। अगर कल जन्नत ना मिली तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह अपना वादा पूरा कर। वहां कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, जो सुनेंगे ठीक ठीक सुनेंगे, यानी आवाज का कोई मसला नहीं होगा वहां। इनका रिस्क उनको सुबह शाम मिलेगा, दोपहर को नहीं खाएंगे। हम दुनिया में कितने वक्त खाना चाहते हैं, तीन टाइम। जन्नत का खाने की जहां बात होती है सुबह और शाम की होती है। और मैंने देखा है कि तरक्की याफ्ता कौमें भी सुबह ही शाम खाती हैं, लेकिन हम तीन टाइम खाते हैं। फिर परहेजगार लोग जन्नतों के वारिस होंगे, जो वादे अल्लाह ने इनसे किए हैं वो पूरे होंगे। पूरे रुकू में से जो हमारे लिए बातें हैं, अंबिया कराम की सिफात अपने अंदर पैदा करनी है, सच को अपनाना है, घर वालों को नमाज का हुक्म देना है और फिर उस पर सब्र भी करना है, और रब का पसंदीदा बनना है। कैसे बनते हैं रब के पसंदीदा, कोई बताएगा आप में से? इंसान रब का पसंदीदा कैसे बनता है? चले ये बता दें, दुनिया वालों का पसंदीदा कैसे बनते हैं? किसको राजी करना आसान है, अल्लाह को या बंदों को? यकीन करें अल्लाह को बंदा आसान है। एक रब आसानी से राजी हो जाता है, दुनिया वाले राजी नहीं होते। वो कहानी तो आपने पढ़ी होगी ना, वो जो गधे के ऊपर वहां पर बेटा जा रहे थे, हर मुमकिन तरीका कर लिया और बातें ही सुनी। तो लिहाजा हमने अपने अंदर ख्वाहिश करनी है इस चीज की कि हमसे अल्लाह ताला राजी हो। दिल से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि कल क़यामत के दिन तू मुझे देखे और तुझे मुझ पर प्यार आ जाए। दुनिया में भी पूछा करें अल्लाह ताला से कहीं जाते आते वक्त, अल्लाह ताला मैं कैसी लग रही हूँ। कहीं भी जाते हैं ना, सबसे पूछते हैं, आईने से तो बार बार पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं, चंद लम्हे के लिए रब से पूछा करें मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए रुकू नंबर 8। وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا। इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या फिर जिंदा करके निकाला जाऊंगा। हैरत का इजहार है। क्या ये इंसान इतना भी याद नहीं रखता कि हमने इसे इससे पहले पैदा किया हालांकि वो कुछ भी ना था। तेरे परवरदिगार की कसम, हम इन्हें और शैतानों को जमा करके जरूर जरूर जहन्नम के इर्द गिर्द घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर करेंगे। दुनिया में जो नहीं झुकते थे, जहन्नम में झुके हुए गिरेंगे। फिर हम हर गिरोह से इन्हें निकाल कर खड़ा कर देंगे जो अल्लाह रहमान से बड़े अकड़े अकड़े फिरते थे। कौन लोग होते हैं ये? फिर हम इन्हें भी खूब जानते हैं जो जहन्नुम में दाखिल किए जाने के ज्यादा लायक हैं। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक्दिया। तुम में से हर एक को वहां जरूर वारिद होना है, ये तेरे परवरदिगार के जिम्मे कतई और फैसला शुदा अमर है। फिर हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे और नाफरमानों को और इसमें घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे और नाफरमानों को इसी में घुटनों के बल गिरा हुआ छोड़ देंगे। जब इनके सामने हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो काफिर मुसलमानों से कहते हैं, बताओ हम तुम दोनों जमातों में से किसका मर्तबा ज़्यादा है और किसकी मजलिस शानदार है। وكما خلقنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا وريا. ہم تو اس سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں. فرنیچر کو کہتے ہیں ریا. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے. کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں, یعنی عذاب یا قیامت. اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑے برے مرتبے والا اور کس کا جتھا کمزور ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے, اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے. اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ, کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی, کیا وہ غیب پر مطلع ہوا یا اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے. یہ جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے, یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا. انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں. کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے. یہ تھا رکوع نمبر 8. اس کا عنوان کیا ہے؟ کس کی محفل اچھی ہے. اصل میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا. اگر پورے رکوع کو ہم دیکھیں تو شروع میں مرنے کے بعد اٹھنے کی باتیں کی گئیں اور انسان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ مرنے کے بعد میں زندہ نہیں کیا جاؤں گا, اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والوں کی کی. ایک چیز جو اس میں ہم نے دیکھی آیت نمبر 71, اگر اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر وارد ہونا ہے. اس آیت کی روشنی میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پل صراط کے بارے میں ہے. جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا اور جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہے. کچھ جلدی گزر جائیں گے, کچھ آہستہ گزریں گے, کچھ پلک جھپکنے کی رفتار سے, کچھ پرندوں کی طرح اڑنے کی رفتار سے, کچھ عمدہ گھوڑوں, اور کچھ تو ایسے ہوں گے جیسے گرتے پڑتے گزریں گے. ہر بندے کی نیکیاں اس کو وہاں سے تیزی سے گزارنے کی میں اس کی مدد کریں گی. بخاری کی بڑی طویل روایت ہے جو اس کا مفہوم اس میں آتا ہے کہ ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے. بہت تکلیف دہ سخت حالات ہوں گے, اندھیرا ہوگا, باریک ہے, نیچے جہنم ہے, اوپر پل ہے. میں اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ہمیشہ وہی وقت یاد آتا ہے کہ آپ کسی رات میں سفر کر رہے ہو, اندھیری رات ہو, سڑک تنگ ہو, دونوں طرف کنارہ نہ ہو اور آپ کسی دریا کے اوپر سے گزر رہے ہوں. ایک خاص قسم کی انسان کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ذرا سی حرکت اس کو اس دریا میں گرا سکتی ہے, لیکن وہاں جہنم دہک رہی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, کیا قیامت کے دن آپ مجھے یاد کریں گے؟ محبت تھی نا, تو محبت میں انسان پوچھتا ہے کہ جب دنیا میں یاد رکھتے ہیں تو وہاں بھی رکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ, قیامت کے مرحلوں میں تین مقام ایسے آئیں گے, لا یذکر احد احدا, کوئی ایک کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھ سکے گا اور میں بھی تجھے بھول جاؤں گا. وہ کون سے تین مرحلے ہوں گے؟ عند المیزان, جب نامے اعمال مل رہے ہوں گے, تل رہے ہوں گے. ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوگی, یعنی میزان جب تول رہے ہوں گے, نامے نیکیاں بدیاں تل رہی ہوں گی, اس وقت ہر بندہ خوف میں ہوگا. پھر دوسری کیفیت کون سی ہوگی؟ جب نامے اعمال بٹ رہے ہوں گے, हर एक को गम होगा कि दाएं में आएगा कि बाएं में आएगा, और तीसरा जब पुल सरात से गुजर रहे होंगे तो उस वक्त कोई किसी को याद नहीं रखेगा। अल्लाह ताला हमारे लिए उस वक्त के लिए आसानियां कर दें। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इनकार करने वाले लोगों के कुछ एतराजात और उनका जवाब दिया है। अमूमन लोगों के एतराज क्या होते हैं कि जब दुनिया में सब कुछ हमें मिल गया तो वहां क्यों ना मिलेगा। अपनी बड़ी बड़ी महफिलों के तकाबुल करते हैं कि देखो हमारी पार्टीज बड़ी हैं या तुम्हारी पार्टी बड़ी है। इसमें यह आयत भी बड़ी काबिल गौर है, आयत नंबर 74, वकम अखलकना क़बलहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन वरीअन। हमने बहुत सारी जमातों को गारत कर दिया, वो साजो सामान और नामो नमूद में इनसे बढ़ चढ़ कर थी। देखा क्या है कि वो लोग जो दुनिया परस्त होते हैं वो अपने बड़े बड़े घरों, बड़ी बड़ी महफिलों, क्लबों, होटलिंग, खूबसूरत फर्नीचर, इन सारी चीज़ों का बड़ा मान करते हैं। जब दीन वाले उनको दीन की तरफ बुलाते हैं तो वो तकाबुल करने लगते हैं कि अच्छा वाकई हम देखते हैं कि क्या ये महफिल हमारी शान के लायक है भी कि नहीं, क्या हम इसके अंदर जाके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे भी कि नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि आज तुम तो क्या हो, तुमसे बड़ी बड़ी महफिलों वाले चले गए और वो चीज़ें उनको अल्लाह के अजाबों से बचा न सकें, तुम कैसे बचोगे। तो हमारे अमल की बात क्या है कि हमने हक के मुकाबले में कभी भी रुकावटें नहीं डालनी, दोबारा मरने के बाद जीने के ऊपर शक नहीं करना, पुल सरात पे से गुजरने के लिए अभी से रोशनी को ढूंढना है, अंधेरों से निकलना है, अपने बड़े बड़े घरों पे मान नहीं करना, अपनी बड़ी बड़ी महफिलों पे कोई फख्र नहीं, बाकियातुस सालेहात को बढ़ाने की कोशिश करनी है आयत नंबर 76 के नाते से, और क़यामत के दिन तन्हा रब के सामने जाने का यकीन रखना है आयत नंबर 80। यकीन आता है वैसे? आज दुनिया में इंसान ने ऑपरेशन करवाना होना तो अकेला नहीं जा सकता, खौफ आता है उसको मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन क़यामत के जो मरहले हैं ना वो किसी भी ऑपरेशन थिएटर से बहुत ख़तरनाक है। और मैं जब पुल सरात का मंजर सोचती हूँ तो मेरे जहन में एक ऑपरेशन थिएटर आता है। हदीस में आता है कि इसके ऊपर आंकड़े लगे हुए, क्लूब, इस तरह जैसे हुक्स होते हैं ना, क्लिप्स, जो लोग इस पे आएंगे, और ये बहुत स्लिपरी है, फिसलेगा, जब लोग इससे फिसलेंगे ना तो वो उन आंकड़ों के अंदर अटक जाएंगे, यानी जमीन और आसमान में मुअल्लक होंगे। बल्कि बाज रिवायतों में आता है कि नबी सल्लम ने मेराज की रात देखा कि कुछ औरतें हैं उनको उनके पिस्तानों के साथ यानी उनकी ब्रेस्ट के साथ लटकाया गया है ऐसी जगहों से, तो पूछा गया कि ये कौन औरतें हैं, तो फिर वही बात हुई कि जिना और बदकारी और अपने आप को गैरों के लिए सजाने वालियां और जिना के लिए यानी अपने आप को बना के सजाने वाले लोग हैं। तो पुल सरात पे असल में अल्लाह ताला इंसान के जिस्म का गंदा खून निकालेगा, सब हराम की कमाइयां, हराम के काम, वो सब निकलेगा, वो गोश्त जो हराम पे पले वो वहां कटेंगे। दुनिया में मैं इसको कैसे महसूस करती हूँ, कभी किसी के हाथ में कोई दाना निकल आता है बस पड़ जाती है, आप देखते हैं कि बाजू अकड़ने लगती है, आप तकलीफ महसूस करते हैं। अब उसके दो तरीके हैं कि आप उसको अपने हाथ से हल्के हल्के सहला लें और फिर उसकी पस निकल जाएगी, थोड़ी सी अकड़न कम हो जाती है। ये काम तो आसान होता है और इंसान खुद कर लेता है, और अगर कोई खुद जुरत ना करे कि मैं नहीं हाथ लगा सकती तो दूसरा तरीका क्या है कि फिर डॉक्टर पे जाते हैं। जब डॉक्टर पे जाते हैं तो वो तो एकदम काटेगा, चीरेगा और अंदर से सिर्फ पस नहीं खून भी निकलेगा। मुझे ऐसे लगता है कि अपनी गुनाहों को छोड़ना अपने गुनाहों की पस निकालना है। जब दुनिया में हम तौबा कर लेते हैं, गुनाह छोड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला हमें पाक कर देता है, हम बच जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता इन गुनाहों के साथ हम मर गए ना, फिर ऐसे ऑपरेशन थिएटर्स हैं, कुछ कब्र में होंगे अजाब कब्र की सूरत में, कुछ पुल सरात में, अल्लाह ताला पाक करना चाहेगा। और जब बिल्कुल साफ सुथरा इंसान रह जाएगा ना, दिल का पाक, जिस्म का पाक, उसकी जुबान पाक, उसकी आंख पाक, आंखों की हराम कारियां वहां जाके धुलेंगी, कानों की हराम चीजें वहां धुलेंगी, बिल्कुल पाक होगा, फिर जन्नत में जाएगा। क्योंकि जन्नत में ऐसे लोग नहीं जा सकते कि जो ऐसे गंदे हों, वरना तो जन्नत का माहौल भी गंदा होने लगेगा। तो अल्लाह ताला हमें अभी उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आखिरी रुकू है सूरत मरियम का, रुकू नंबर 9, अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन। क्या तूने नहीं देखा कि हम काफिरों के पास शैतानों को भेजते हैं जो इन्हें खूब उकसाते हैं। देखा कभी किसी काफिर के पास शैतान आते हुए? उनकी हरकतों से पता चलता है कि इनके पास इस वक्त शैतान आए हुए। तो इनके बारे में जल्दी न कर, हम तो खुद ही इनके लिए मुद्दत शुमार कर रहे हैं जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह रहमान की तरफ बतौर मेहमान के जमा करेंगे। कैसा वो दिन होगा, अल्लाह के मेहमान बन के जाएंगे। लेकिन कौन? परहेजगार। मनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम वर्दा, इला जहन्नम वर्दा, और गुनाहगारों को सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ हांक ले जाएंगे। तकाबुल देखें कैसे, एक तरफ रब की मेहमानी और दूसरी तरफ जहन्नम में प्यासे। किसी को शिफात का इख्तियार ना होगा, सोचिए, सिवाय इनके जिन्होंने अल्लाह की तरफ से कोई कॉल और इकरार ले लिया है। इनका कॉल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने भी औलाद इख्तियार की है। यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो, करीब है कि इस कॉल से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजे रेजे हो जाए और वो रहमान की औलाद करने बैठे। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जब ये कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है तो ये इतनी बड़ी बात है कि आसमान फट जाए इससे। शाने रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। आसमान और जमीन में जो भी हैं सब के सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। लकद अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा, इन सब को इसने घेर रखा है और सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे क़यामत के दिन अकेले इसके पास हाजिर होने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने शाइस्ता अमल किए उनके लिए अल्लाह रहमान मोहब्बत पैदा कर देगा। हमने इस कुरान को तेरी जुबान में बहुत ही आसान कर दिया है कि तू इसके जरिए से परहेजगारों को खुशखबरी दे और झगड़ालू लोगों को डरा दे। वकम अखलकना कबलहुम मिन कर्न, हमने इनसे पहले बहुत सी जमातें तबाह कर दी, क्या उनमें से भी कोई किसी की तू आहट पाता है या इनकी आवाज की भिनक भी तेरे कानों में पड़ती है? यानी वो सब कहाँ गए, कभी सुना आपने? कौम आद का कोई बंदा नजर आया कहीं चलते हुए? कौम समूद, कौम सवाले, वो लूती कोई नजर आए? आज उनका खटका भी नहीं तो आज गुनाह करने वाले अपने आप को महफूज कैसे समझते हैं? तो ये था आखिरी रुकू। इसका उन्वान क्या है? इनसे मोहब्बत करो। इस रुकू में हमने क़यामत के कुछ मंजर देखे। शुरू में अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ सामने रखी कि मुशरिकीन या गलत काम करने वालों के हाल पे जल्दी ना करो। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों को अपना मेहमान करार दिया। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला भी हमें इनमें करे। मुजरिमों को जानवरों की तरह प्यास से जहन्नम की तरफ हांका जाएगा, वो लोग जो एक मिनट कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर नहीं रहते। क्या बनेगा, कोई सिफारिश उनके काम नहीं आएगी। क्यों करते हैं ऐसा इनकार, उसकी वजह बताई। उन पर शैतान आते हैं जो इनको हक की मुखालफत पर उकसाते हैं। जितने इंसान गुनाह करता है उतना ही शैतानों की उकसाहट बढ़ने लगती है। अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैंने इनके दिन गिन रखे हैं। उसके बाद कलमाए कुफर यानी अल्लाह की औलाद करार देने की को इतना भारी कलमा कहा गया कि इससे करीब है कि आसमान फट जाए। क्या वाकई हमारे दिल फटते हैं जब हम किसी को ये कहता हुआ सुनते हैं कि जीसस सन ऑफ गॉड? मुझे ऐसे लगता है हम आदी हो गए। चर्चिस के सामने से गुजरते हैं, कुछ नहीं होता। हम ऐसा लिटरेचर देखते हैं, कभी कुछ कुछ नहीं होता। हालांकि ये इतनी बड़ी बात है। मैं ऐसे सोचती हूँ कि जैसे कोई हमारे बाप को बुरा कह दे या हमें कोई कह दे तुम्हारे दो बाप हैं, खाने को दौड़ेंगे ना उसको। लेकिन कोई ये कह दे तुम्हारे दो खुदा हैं तो हमें क्यों तकलीफ नहीं होती। इस तर्क को महसूस करना है हमने, इस रुकू के नाते से शिर्क की कबाहत को महसूस करना है, अपने अंदर इस दर्द को पैदा करना है। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी बात कही, और वो क्या है कि ईमान वालों के लिए मैं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता हूँ। हदीस में आता है जब अल्लाह ताला किसी नेक बंदे को देखता है तो उससे मोहब्बत करता है, फिर जिब्राइल को कहता है कि जाओ फुला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। फिर जिब्राइल आसमान में एक मनादी लगाते हैं, पुकार लगाते हैं कि अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, उसका नाम लिया जाता है आसमानों में। चुनाचे तमाम आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर ज़मीन में भी उसके लिए कबूलियत और पज़ीराई रख दी जाती है। मोहब्बत जो है हर इंसान की एक बुनियादी ख्वाहिश है, एक ज़रूरत है। लोगों की मोहब्बत लेने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, फिर मिल जाती है, नहीं मिलती। जिनकी मोहब्बत लेने के लिए रब को नाराज़ करते हैं वो फिर भी हमसे राज़ी नहीं होते। तो लिहाजा दुआ क्या करनी है, अपने अमल की इस रुकू में क्या बात है कि हमने अपने आप को ऐसा बनाना है कि रब हमसे मोहब्बत करने लगे और अपनी मेहमानी के लिए कबूल कर ले। चलिए जी, सूरत ताहा शुरू करते हैं। इसके बारे में एक बात बता दूं कि ये वही सूरत है कि रिवायत में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी को सुना था अपनी बहन के घर में और उनके दिल में ईमान आया था।